श्याम बाबू के रहस्योद्घाटन पर अभी उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की भी नहीं थी कि बड़ी बहू किलक उठी, बाप रे दोनों एक जैसे। और क्या, मंजली ने आंखें टिमकाई, 2 साल बाद पर्चे का पहुंचना ही जब बेटों को इतना अखरा है तो सच्चाई जानकर पता नहीं कितना आग बबूला होंगे। बूढ़े आदमी ने अपनी दुलारी बीवी का मान रखने के लिए एक दिन भी पर्चियों का नागा नहीं होने दिया। सचमुच कितने हैरत की बात है ये। देखना अपने माँ बाप का असली चरित्र जानकर ये लोग कितना छटपटाएंगे। छोटी बड़ी इत्मीनान से बोली। रमा ने इस बार भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की, पर श्याम बाबू उखड़ गए। छटपटाएंगे तो छटपटाते रहे, उनकी वजह से हम जीना थोड़े ही छोड़ देंगे। जरूर जिंदा रहिए, अपने बेटों की छाती पर मूंग दलिए, उनकी बात को ठुकरा कर अपनी मनमानी कीजिए। आप लोगों से इसके अलावा उम्मीद भी क्या की जा सकती है, बड़ी बहू ने ताना दिया। क्या मनमानी की है मैंने, बोलो। अपने पूज्य जनों पर तोहमत लगाने से पहले कुछ तो सकुचाओ। श्याम बाबू का चेहरा पीड़ा से काला पड़ गया। आपने हुक्मदुली की है, घर के मालिक जब साफ साफ कह चुके थे कि पर्ची सिस्टम बंद, तो इसका मतलब था कि वो हमेशा के लिए बंद, और आपने दुकान पर भेजने के बदले अपनी जेब से पैसे देकर भूखों को भोजन कराना जारी रखा। ये छोटा अपराध है, मंजली की मुस्कान कुछ और व्यंजक हो उठी। हाँ, मैंने अपनी पत्नी की हस्ताक्षरित पर्चियों पर रोज 2 लोगों को भोजन के लिए पैसा दिया। श्याम बाबू शांत किंतु आहत कंठ से बोले, लेकिन इसके लिए किसी उल्लू के पट्टे के सामने हाथ तो नहीं फैलाया? अपनी चेन अंगूठी बेचकर एक पुनीत यज्ञ में आहुति देना क्या कोई जुर्म है? आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं, छोटी बहू ने कहा। सुबह से शाम तक हम तीनों के पति ही दुकान पर खटते हैं। इस घर में आने वाला और यहाँ खर्चा किए जाने वाला एक एक पैसा उनकी कमाई का है। आप तो 2 साल से सिर्फ चारपाई तोड़ रहे हैं, इसके अलावा क्या किया है बताएंगे? वही तो मैं भी कहती हूँ, बड़ी बहू ने मुस्की बिखेरी। हराम खोरों के लिए पराई मेहनत की क्या कीमत, उठाई और पानी में बहा दी। देखना आज शाम को दुकान से लौटने पर वे तीनों कितना नाराज होंगे। तुम अपनी सीमाएं तोड़ रही हो बहू, श्याम बाबू की आवाज उद्विग्न हो जाने के कारण इतनी लड़खड़ाई कि वो इसके बाद अपना वाक्य भी पूरा ना कर सके। इतनी देर से खामोश खड़ी रमा ने अब पहली बार अपनी जुबान खोली। सचमुच सीमाएं टूट चुकी हैं, हमारे लिए भी फैसले का वक्त आ गया है। उठो और फौरन इसी वक्त यहां से निकलो। बहुओं को इतनी जल्दी मुराद पूरी हो जाने की उम्मीद ना थी। सास की यही सद्बुद्धि बरकरार रहने की उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। श्याम बाबू हतप्रभ होते हुए बोले, क्या कहती हो रमा, हम लोग घर छोड़ दें? हाँ, रमा ने शांत कंठ से कहा, समझदारी का तकाजा यही है। हम लोग बहुओं की कटुक्तियां बहुत देर से सुन चुके, बेटे आकर इससे दुगनी चौगुनी गालियां सुनाए यही चाहते हो तुम? घर छोड़ने के फैसले इतने जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं रमा, श्याम बाबू ने पत्नी को समझाने की कोशिश की। चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो, शाम को अपने सपूतों के आने पर हम खुलकर इस विषय पर बात करेंगे। कोई फायदा नहीं, रमा की आवाज में ठंडापन आ गया। वे तीनों तो 2 साल पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं। मुझे दुख इसी बात का है कि पूरे 2 साल तक तुम अकेले इस दर्द को झेलते रहे। बोलो मुझे अपना साझेदार क्यों नहीं बनाया? मैं पुरुष था, झेल गया। तुम भावुक मन की स्त्री हो, झेल ना पाती, श्याम बाबू ने व्यथित कंठ से कहा। लेकिन अब तो तुम्हारी फूल कुमारी ने भी क्रूर यथार्थ का आमना सामना कर लिया है ना? रमा जबरन मुस्कुराई। इसके बाद एक ठोस फैसले पर पहुंच जाना ही हमारे लिए उचित है। अपमान सहन करने की भी आखिरकार सीमा होती है। नहीं रमा, इस तरह अधीर होने से काम ना चलेगा। हमें इस बारे में अपने बेटों के साथ आखिरी मर्तबा खुलकर बात करनी होगी, श्याम बाबू ने समझाया। रमा चुप रही। पास खड़ी बहुओं ने सास ससुर के बीच का सारा वार्तालाप सुना था। वे मन ही मन मग्न भी बहुत हुई थी कि चलो कंटक कटा। अब श्याम बाबू की नसीहत पर रमा की चुप्पी देखकर उन तीनों का मन कुलबुला उठा। बनता हुआ काम कहीं बिगड़ ना जाए, ये सोचकर बड़ी बहू ने सास को सान पर चढ़ाया। आप तो बहुत स्वाभिमानी होने का दम भरती हैं, है ना? आपका स्वाभिमान क्या अब भी यहाँ रुककर अपमान की रोटियां तोड़ना पसंद करेगा? मैं तो कहती हूँ कि अगर जरा भी गैरत बाकी है तो जितियाए गए इंसान को कहीं भी कुएं तालाब में डूबकर मर जाना चाहिए। एक तो घर के भीतर झूठ बेईमानी का प्रपंच रचना और फिर पोल खुल जाने पर बेशर्मी लाद कर जीना, ये भी कोई जिंदगी है? मंझली बहू ने भी मुंह बिचका कर कहा। छोटी भला अदाएं दिखाने में पीछे रह सकती थी? उपदेशक का लबादा ओढ़कर जंग के मैदान में कूद पड़ी। छोटे छोटे बच्चों तक को सच और ईमानदारी का पाठ सिखाया जाता है। आजकल के बूढ़े जब बच्चों के सामने झूठ बोलने की मिसाल बनने लगे तो उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में मर खप जाना चाहिए। बोलो क्या कहते हो अब? रमा ने श्याम बाबू की ओर देखा। इसके बाद भी यहाँ ठहरना चाहते हो तो शौक से रुको, मैं तो चली। रमा को घर छोड़ने के लिए कटिबद्ध देखकर श्याम बाबू भी साथ चल पड़े। मुझे इतना बेशर्म क्यों समझते हो? मैं तुमसे अलग थोड़े ही हूँ। कुछ ही क्षणों में वृद्ध दंपत्ति सड़क पर खड़े थे। इन लोगों ने हमें गलत साबित कर दिया। चोरी और सीना चोरी इसे ही कहते हैं, श्याम बाबू व्यथित कंठ से बोले। रमा ने कोई जवाब न दिया। वो होकर भी जैसे वहां नहीं थी, उसका वजूद किसी शून्य में गुम हो चुका था। श्याम बाबू को पत्नी पर गहरा लाड़ उमड़ उठा। उन्हें लगा इसके मन की उथल पुथल की कल्पना क्या सहज है, किस तरह एक अलहर शोरसी ने विपन्न अवस्था में भी सिर्फ अपने मनोबल के सहारे पराठों की दुकान शुरू करवाई थी, किस तरह दुकान को आगे बढ़ाया था और दिन दूनी रात चौगुनी बरकत के बल पर उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। दिनों का फेर ही तो है कि बेटे बहुओं की दुर्भिसंधी के चलते आज उन्हें इस तरह दुकान और घर से बेदखल होकर। श्याम बाबू की आंखें पनिया उठी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी ही संतान क्यों बदल जाती है। क्या पराए घर से आई बेटियां उन्हें बदल देती हैं? पर माँ बाप की निश्चल अंतरात्मा तक पैठ रखने वाले आत्मज किसी के भी बहकाने भड़काने पर क्यों और कैसे मूर्ख बन जाते हैं? उनके पास क्या अपनी समझ नाम की कोई वस्तु नहीं होती? या फिर बीवी की पाठशाला में दीक्षित होने के बाद उन्हें निजी स्वार्थ के अलावा कुछ नजर नहीं आता है? जो भी हो, सच यही था। दर दर के भिखारी बनकर वे पति पत्नी अब सड़क पर खड़े थे। श्याम बाबू के पांव आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। अपनी बूढ़ी धुंधली निगाहों में गहरी कसक भरकर उन्होंने आखिरी बार अपनी भव्य अट्टालिका देखी और बोल पड़े, सब कुछ छूट गया, हमेशा के लिए छूट गया। क्यों इतने दुखी होते हो? रमा जैसे चौंक कर होश में आती हुई बोली, घर घर में आज यही हो रहा है। हमारी संतान ने कुछ अलग और अनोखा थोड़े ही किया है। ठीक कहती हो, श्याम बाबू ने ठंडी सांस भरी। मैं अपने लिए नहीं तुम्हारी खातिर दुखी हूँ। मैंने तो 2 साल पहले ही ये सच्चाई जान ली थी और इसे झेलने के लिए फौलादी मन बना लिया था, पर तुम अचानक सिर पर पड़े इस सदमे से कहीं विचलित मत हो जाना। मेरी चिंता मत करो, रमा बोली, अभी तुमने जलपान तक नहीं किया है। हमारे सामने दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी दुनिया में कहीं कोई दूसरी अन्नपूर्णा जरूर होगी जो हम दोनों राह के भिखारियों का पेट भरेगी। सिर्फ पेट की चिंता? रमा की भौहों पर बल पड़ गए। मैं पूछती हूँ, तुमने रुपए पैसे का सारा अधिकार क्या सचमुच उन्हें सौंप दिया है? हाँ, श्याम बाबू बोले, मैंने अपनी औलाद को पहचानने में गलती की। मैंने उन्हें अच्छा खाना पहनना और महंगा स्कूल तो दिया, पर अच्छे संस्कार न दे सका। इसकी मुझे गहरी कसक है। अपना कहने को कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहा? आखिरी संपत्ति के रूप में वही सोने की जंजीर और अंगूठी थी, जिसे बेचकर मैं पिछले 2 सालों से तुम्हें अन्नपूर्णा बनाए रहा। एक गहरा हम रमा के कंठ से निकला। तुम क्या सोचने लगी? इस वक्त इन बातों को सोचने का कोई अर्थ नहीं रहा। भले ही हम दुकान पर चलकर उनके पांव पकड़ ले, वे कमीने अब नहीं पसीजेंगे। श्याम बाबू निराश कंठ से बोले, तुमने उसी वक्त उनका विरोध क्यों नहीं किया? रमा अनमनी बनी रही। वे तीनों जवान हैं, एक हो चुके हैं। उनके सामूहिक बल के सामने मेरा मुंह खोलना फिजूल था। उन्होंने उस वक्त इसी फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया था जो उनकी बीवियों ने आज हमें दिखाई है। बताओ, बहुओं की सामूहिक ताकत का तुम ही ने कौन सा विरोध किया? घर छोड़कर सड़क पर आ जाने के सिवाय और कोई रास्ता सूझा तुम्हें? हाँ, रमा के होठों पर एक दीप्त मुस्कान दौड़ गई। चलो सीधे डीएम कार्यालय चलेंगे। जिलाधिकारी के सामने अपने कबूतों की करनी का कच्चा चिट्ठा बयान करना है, न्याय मांगना है। देखना, इन दबंगों को सदल बल हमारा आशियाना खाली करना पड़ेगा, सीधे नहीं तो प्रशासन पुलिस के डंडे से। इस कोठी के स्वामित्व के कागज मेरे पास बैंक के लॉकर में सुरक्षित हैं। श्याम बाबू स्तब्ध थे। उन्हें लगा वे कैसे भूल गए थे कि जो अन्नपूर्णा है वही दुर्गा, चंडी और काली भी है। बूढ़े पर सधे हुए कदमों से पत्नी का हाथ थामे हुए वो मंजिल की ओर बढ़ चले। तो देखा आपने, एक माँ जो अपने बच्चों को इतने लाड़ प्यार से पाल पोसकर बड़ा करती है, उनके गलत रास्ते पर जाने या उनके पथभ्रष्ट होने पर उनको किस तरह से सही रास्ते पर लाती है, यही इस कहानी का संदेश है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।